SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
3 साल पहले 41 साल के एक शरणार्थी जिनका नाम माजिन है, वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। वो उत्तरी इराक के दुहोक में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन जब आईएसआईएस ने उनके इलाके पर कब्जा किया तो वो घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और अपने परिवार के साथ लेबनान चले गए। आज ऑस्ट्रेलिया में आए हुए उन्हें 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली।
To work in many places by websites like Seek and Indeed, but I didn't get a chance.
माजिन की पत्नी भी एक स्कूल शिक्षक के रूप में नौकरी की तलाश कर रही हैं, लेकिन माजिन बताते हैं कि स्थानीय कार्य अनुभव की कमी और भाषा की कठिनाई उनके और उनकी पत्नी के लिए सबसे बड़ी बाधा थी।
They always ask that the applicant have local experience. And for us, our experience are from other countries. Another reason why we are not employed is that our language must be at a highest level, and this is also a big barrier.
कुछ आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक विकास समिति की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 4 स्थायी कुशल प्रवासियों यानी कि हर 4 स्किल्ड माइग्रेंट में से एक अपनी वर्तमान नौकरी में अधिक योग्य है। रिपोर्ट के अनुसार कौशल और नौकरियों के बीच इसी तालमेल की कमी से प्रवासी श्रमिकों को साल 2013 और 2018 के बीच कम से कम $1.25 बिलियन के वेतन का नुकसान हुआ, जिसे फॉरगॉन वेजेस भी कहा जाता है। डेविड फॉर्ब्स सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल में एक वरिष्ठ रोजगार संचालक हैं। ये एक संगठन है जो शरणार्थी और प्रवासी समुदायों को ऑस्ट्रेलिया में बसने में मदद करता है। उनका कहना है कि नए आए कौशल प्रवासियों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के क्या अवसर हैं और उनको पाने का रास्ता क्या है।
I think a lot of people have this misconception that getting employment is as simple as, you know, getting the education or getting the qualification and then the job actually comes. And that's just not the case, not for skilled migrants and not for Australians either. And I think the difficult part with skilled migrants is that they have no idea what these pathways to employment are. And when you go to skilled jobs in particular, which are a lot more complex, a lot more niche, and the recruitment process around them are a lot longer and a lot more difficult, and there's a lot more chances for them to stumble up in that process. So, I think identifying what that pathway is really crucial, and then that can sort of add that certainty to, okay, this is what I need to do next, and this is how I can sort of achieve my employment goals.
Fred Molloy एक पंजीकृत प्रवासन एजेंट हैं और कनेक्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। लोगों को उनके वीजा आवेदनों में मदद करने और ऑस्ट्रेलिया में उपयुक्त नौकरी खोजने के अलावा कनेक्टिंग एक जॉब एजेंसी भी है जो नियोक्ताओं को ऐसे कौशल खोजने में मदद करती है जो उन्हें स्थानीय रूप से नहीं मिल पाते। फ्रेड मोलॉय कहते हैं कि प्रवासियों के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि क्या उन्हें अपने काम के अनुसार किसी लाइसेंस या कहीं पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत है या नहीं।
Quite often there's occupation specific licensing or registration or even tickets that they may need to obtain. So white cards, blue cards for construction trade or working at heights, or if they're working with children, they'll be working with children's certificates. It all sort of depends on specifically on the occupation. There may also be some gap training that they need to do to obtain licensing, like electricians or plumbers, those kind of trades.
Nadina Benvenisti, एक CV लेखक, करियर कोच और NB करियर कंसल्टेंसी में रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं। वो नौकरी चाहने वालों को सही नौकरी खोजने में मदद करती हैं और नियोक्ताओं के साथ काम करके उन्हें सही मैच खोजने में सहायता करती हैं। वो कहती हैं कि अक्सर नौकरी के इच्छुक लोगों का आवेदन इसलिए खारिज हो जाता है क्योंकि उनका CV सही नहीं होता।
Another recommendation is to do a lot of market research. So doing searches for job adverts online and looking at the way that recruiters are communicating these jobs and the words and the phrases that they are using in these adverts, and make sure that the similar language is used when preparing the CV, so that the CV is Australianized, it's using the keywords that are relevant again to the Australian market.
वो ये भी कहती हैं कि नौकरी के अनुसार आवेदन करना चाहिए।
one of the things that happens is when people are struggling to get a job, they will start to apply for any job they see advertised that might fall into their category. But this can actually be very detrimental, because if a recruiter keeps receiving somebody's CV for a job that they're not suitable for, then they feel that that person's wasting their time and not reading the job adverts. So they'll stop reading their CV. So make sure that they are reading what the recruiter is looking for in terms of experience for that job.
फ्रेड के अनुसार कभी-कभी एक नए प्रवासी के रूप में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि वो स्थानीय प्रणालियों, उद्योग मानकों और कार्य संस्कृति को नहीं समझ लेते।
Often as well, if they're constantly rejected, they need to reassess whether they're willing to take a step down to be able to get into the industry, get into a company, and then work their way back to the height of the position they were while they were overseas. And as I mentioned on licensing, sometimes they come here with a permanent residency visa but don't have the license to work within their specific occupation or trade. So they may get a job as a trades assistant. If it's an electrician, for example, gain experience assisting electricians here, understand the differences between electrical systems here versus overseas.
फ्रेड कहते हैं कि अपने संबंधित क्षेत्र में किसी छोटे स्थानीय जॉब से शुरू करना एक अच्छा विचार हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी क्लाइंट फेसिंग भूमिका में होने के लिए भाषा और संचार में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। करियर कोच नादिना का कहना है कि नौकरी पाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना काफी नहीं है, सिर्फ आवेदन करने के बजाय भर्ती करने वालों के साथ बातचीत करना भी जरूरी है।
Another tip is to do lots of networking. So LinkedIn is a good tool to connect with business leaders. So connecting with people that employ people with the skill set that the migrant has and looking for job opportunities using LinkedIn. If there are phone numbers on job adverts, ringing up the recruiters and having a chat to them, building relationships, finding out where their skills are best fitted on the market. So rather than just applying for jobs, having conversations with people.
AB Josie एक निर्माण परियोजना प्रबंधक और विकास प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। उन्होंने भारत और सऊदी अरब में एक आर्किटेक्ट और डिजाइन मैनेजर के रूप में 16 वर्षों तक काम किया। वो फरवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची और जून में उन्हें नौकरी मिल गई। उनका कहना है कि एक बार उन्हें करियर सलाहकार मिल गया तो उन्हें नौकरी खोजने में केवल 6 हफ्ते लगे।
She reworked on my CV, she reworded it completely and she said people don't manually sit and read it anymore, it goes through a computer system. So you need to have those catchwords. So she kind of tutored me on that. Terminologies used were very different. We call it as a more of a feasibility study and a pre-construction study, whereas here it's called a business case. So when I had to explain what I had done, she said, you know what, this is what it is called here. You've called it a different term. You've done these, but just that what you call it is very different.
Settlement Services International के David Forbes का कहना है कि एक बार कुशल प्रवासियों को सही नौकरी मिल जाए, तो उनके पास ऑस्ट्रेलियाई संगठनों को देने के लिए बहुत कुछ है।
And we've actually found that even though how we work here is slightly differently, but because they have that overseas experience, they've got new ways of solving traditional problems. And we found that civil company thought that these guys were absolutely fantastic. They were really, really happy with the work they're performing and because they were so grateful to be there that they were just model employees. From there, they were sort of opening up and like, okay, that was the engineers. Well, what else do you have?
SBS Hindi, Hamari Kahaniya Facebook par.